ओम शांति। राजयोग के संपूर्ण सत्य ज्ञान और उनके नियमित अभ्यास से हमारा जीवन कितना शालीन और दिव्य बनता है, उनकी प्रैक्टिकल साकार प्रतिमूर्ति ऐसे हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वैर भाई जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी भाई बहने भाई साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्यालय के आधार स्तंभ समान हमारे वरिष्ठ भ्राता हैं। दादियों ने 1936 से लेकर के इस विश्वविद्यालय की नींव तैयार की, लेकिन जैसे वृक्ष में भी हम देखते हैं कि मजबूत जड़ों के बाद एक शक्तिशाली तना होता है जो पूरे वृक्ष के आधार विस्तार को अपने ऊपर झेलता है, तो हमारे तीन वरिष्ठ भ्राता है आदरणीय निर्वैर भाई जी, आदरणीय रमेश भाई जी और आदरणीय ब्रिज मोहन भाई जी। तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मुख्यालय में शुरू से लेकर जो अपनी जिम्मेवारी का कार्य कर रहे हैं ऐसे भाई साहब हमारे बीच में हैं। आपने आप वैसे बेसिकली पंजाब से हैं, लेकिन बॉम्बे में आप नेवी में सर्विस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में, और ये ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। बस आप परमात्मा पर फिदा हो गए, आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया और आपको बाबा ने परख लिया आपकी विशेषताओं को और आपको हेडक्वार्टर में स्थायी किया। तब से लेकर हेडक्वार्टर के सभी कैंपस, सभी गतिविधियां और हमारे केंद्रों के कारोबार को संभालने में आप दादियों के साथ साथ कार्य कर रहे हैं। हमारी जो एजुकेशन विंग है उनके आप चेयरपर्सन हैं और आप अपने व्यक्तित्व में बहुत ही दिव्य और योगी हैं। दिल में बहुत ही प्यार और रहम की भावना है, समाज का हर वर्ग और सेवा में लगे हुए हर भाई बहने आध्यात्मिक रूप से तंदुरुस्त रहे, उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, ये भी सदा आपका ध्यान रहता है, जिसके कारण आप ही वो निमित्त इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल को प्रारंभ किया और अनेक आत्माओं की सेवा के आप निमित्त बने। आप इस विश्वविद्यालय के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो हमें मौका है उनकी रूहानी शक्ति, वाइब्रेशंस और विचारों से लाभान्वित होने का। पिछले तीन दिन से बहुत सुंदर विषय पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अपने व्यापार और व्यवहार को तनाव से मुक्त रखने के लिए जीवन में ईश्वरीय शक्ति का समावेश जरूरी है। इस विषय पर आप प्रकाश भी डालेंगे और साथ साथ आपके कोई जानने के जिज्ञासा भरे प्रश्न हो उनके भी उत्तर वो देंगे। तो पहले हम सुनेंगे आदरणीय भाई साहब को। आदरणीय चंद्रिका बहन भाई साहब का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। और हरीश भाई जी से मैं अनुरोध करूंगी कि बैज अर्पण करें।
ओम शांति। प्रिय बहनों और भाइयों, आप सब बहुत रुचि से, प्यार से, शुभ भावना से तीन दिन से यहां समय निकाल कर खास सुबह 4 बजे से लेकर ईश्वरी ज्ञान और योग के बारे में और उसके साथ साथ उसकी एप्लीकेशन से व्यवहारिक जीवन में क्या परिवर्तन लाया जा सकता है, उसके बारे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जैसा बिजनेस विंग नाम है, मैं देखता हूं हमारे निमित जो चेयरपर्सन है वो खुद दादी हृदय मोहिनी, साथ में वाइस चेयरपर्सन शर्मा जी, फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारी राजयोगिनी योगिनी बहन, और साथ में ऐसे अनन्य रत्न हमारे हरीश भाई और दूसरे साथी, इतने अनुभवी हैं। जब प्रोग्राम बनाते हैं तो मुझे पता है कि एकदम कोई प्रोग्राम लिख करके नहीं दे देते हैं, बहुत उसकी आद मध्य अंत की बातें सोच करके जो पहले प्रोग्राम हो चुके हैं उन सब को सामने रखते हुए उससे और आगे क्या अच्छा किया जाए, तब उसके बाद ये कार्यक्रम तैयार होता है। और मैं समझता हूं कि आप सब भाई बहनों ने जब से आप यहां आए हैं और प्रोग्राम सारा अटेंड किया है, अवश्य ही विशेष कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। हाँ, जिनको लाभ प्राप्त हुआ है जरा हाथ तो खड़ा करें, सभी को तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि बिजनेस में तो लाभ ही चाहिए ना। तो ये है आध्यात्मिक लाभ, क्योंकि जब कभी वो नई जंत्री शुरू करते हैं तो क्या दो शब्द लिखते हैं, शुभ लाभ। तो ये शुभ संकल्प किया कि हम कार्यक्रम में चलें तो और पहुंच गए, और फिर पहुंचने के फल स्वरूप लाभ भी प्राप्त हो गया। लेकिन आप स्वयं ऐसी स्थिति को पालें कि आप जिसको नजर से देखें वो निहाल हो जाए, शुभ भावना इतनी दिल के अंदर हो, जैसे गीता बहन सुना रही थी, परिचय दे रही थी, उनकी शुभ भावना मैं देखता हूं, हमारी बहनों की भावना तो इतनी ऊंची है कि ना भी हो किसी के अंदर कोई ऐसे गुण तो वो आ जाए। तो यहां आने के बाद आपने ये तीन दिन में कुछ थोड़ा चखाचुखी की है, टेस्ट किया है, ऐसे ही 50 साल पहले 1959 में पहले हमने बॉम्बे में ये ईश्वरी ज्ञान की जो प्रारंभिक बातें हैं वो सुनना शुरू किया था। और जैसे स्नेहल बहन आपको मेडिटेशन करा रही थी, हमने चार दिन के बाद, चौथा दिन था जब पहले पहले मेडिटेशन का अभ्यास किया था, और उस समय का वो अनुभव इतना सुंदर था, वो एक फाउंडेशन बन गया। भारतवासी भाई बहनों का विशेष मैं देखता हूं संस्कार है, निजी संस्कार है सभी का, पारिवारिक भी है और भारतवासी होने के नाते भी है आध्यात्मिकता का। बिजनेस के अंदर या सर्विस के अंदर सब कुछ आने के बाद भी एक दिल में जैसे उमंग रहता है कुछ और पाएं, कुछ और प्राप्त करें, मालूम नहीं रहता है कि क्या पाना चाहते हैं, और वो नहीं मिलता तो जैसे सब कुछ मिल होते हुए भी खाली खाली लगता है। और वो चीज है, मैं अपने एक अनुभव से आपको सुना रहा हूं कि हम सबके जीवन में चार बातें हैं, वो चारों बातें अगर बैलेंस उनका चारों का हो तो ये जीवन बड़ी सुखद, शांतिमय, और जिसको जो आज की टॉपिक ये इसकी है आपके कॉन्फ्रेंस की, टेंशन फ्री रह सकते हैं। और वो चार बातें सब जानते हैं। पहली बात है स्वस्थ तन चाहिए। तन स्वस्थ नहीं तो आनंद नहीं जीवन में। दूसरा, पारिवारिक स्नेह चाहिए, वो नहीं तो भी जीवन खाली खाली, मन भटकता है फिर। तीसरा, बुद्धि इतनी स्वच्छ और तीखी हो कि अपने पांव पर खड़े हो सके, पढ़ाई में और कमाई में। और अधिकतर इन तीनों पर सबका ध्यान तो बहुत जाता है, पर चौथा जो है आध्यात्मिक अंग, वो जितनी परसेंटेज में होना चाहिए वो उसकी कमी फील होती है। तो देखा गया है कि अगर वो कमी पूरी हो जाए तो बाकी तीन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो भी व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। अगर नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान, नहीं है आध्यात्मिक अंग जो है हमारा, उसमें कमी है, तो आप देखेंगे बहुत तंदुरुस्त शरीर होते भी फिर भी ढीलापन लगता है। बच्चे 80% से ऊपर मार्क्स लेते हैं तो भी टेंशन आती है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मुझे बहुत टेंशन है, क्यों? मार्क्स की कमी के कारण। भाई तेरे कितने मार्क्स आते हैं? 80%। कितने चाहते हो? 95% चाहता हूं। स्ट्रेस। और इसी तरह से परिवार के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी पूर्ति नहीं होती, और उसमें आप सभी अनुभवी हैं, निस्वार्थ भाव से कोई सबके साथ इंटरेक्ट करता है तो वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। जहां थोड़ा सा स्वार्थ आया, उस थोड़े से स्वार्थ के कारण सारी ही लाइफ ही एक अजीब सी लगने लगती है। और अभी कौन से युग में हैं आप? अभी आकर के जान लिया कि पुरुषोत्तम संगम युग में है, लेकिन वैसे कलयुग कहने में आता है ना। और कलयुग में अगर आप किसी को कहो ना निस्वार्थ भाव की बात, तो कहते हैं आप कौन से युग में हैं, आप तो सत्यु की बात करते हैं। इसलिए अगर वो सब तीनों बातों को भी अच्छा रखना है, उसका लेवल बराबर रखना है, तो उसमें आध्यात्मिकता को अगर हम थोड़ा अच्छी तरह से जान लें, समझ लें, तो देखने में आता है कि थोड़े में भी संतोष बहुत है। और वो मैंने अपने जीवन में जब से ये ज्ञान लिया, ईश्वरीय ज्ञान, और उसको महसूस किया कि इस ज्ञान के बिना बाकी सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति कितना अंधकार में है और उसके कारण कितनी ठोकरें खाता है, और वही कारण था कि मैंने अपना लौकिक जॉब छोड़ा, नेवी को त्याग किया, ताकि मेरा पूरा टाइम मैं ईश्वरी सेवा में दे सकूं, अनेक भाई बहनों की सेवा कर सकूं। और जब मैंने नेवी छोड़ी तो मेरी उम्र उस समय 25 साल की थी। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ी, जरूर कुछ अनुभव किया। नेवी के अंदर ट्रेनिंग आदि हो गई हमारी, सब कुछ हो गया। जब अपने एक्टिव सर्विस में आए शिप पर, कुछ रहन सहन का ऐसा वहां का सिस्टम बहुत, बॉम्बे में जो रहते हैं ना, एक एक रूम में कितने लोग रहते हैं, उससे भी ज्यादा टाइट वहां शिप लाइफ में। पुराने जहाज थे 1942 के, और उसके साथ में हैबिट्स अलग अलग। हम कभी सिगरेट टच ना करें, लेकिन हमारे साथ रहने वाले कोई ना कोई वो सिगरेट पिएंगे जरूर। सारा वातावरण अजीब हो जाता था। हम छोटे, हमसे बड़े सीनियर जो लोग, उनके साथ एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल, टेंशन फ्री कैसे रहेंगे। जॉब की इतनी स्ट्रेस नहीं, एडजस्टमेंट्स की ज्यादा टेंशन। बचपन से खाना पीना एक प्रकार का और वहां पर और प्रकार का। सुबह के टाइम अंग्रेजों वाला खाना, ब्रेड और बटर और वो सब, दिन के टाइम साउथ इंडियन, सिर्फ राइस ही मिलना है। शाम के टाइम, जबकि शाम को हल्का होना चाहिए, उस समय परौंठे मिलेंगे। पर यंग थे, वो कोई बात नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी वाइब्रेशन की, और उसके साथ साथ स्थूल, लोग आपस में क्या बात करते हैं, किस तरह से व्यवहार में आते हैं, छोटी छोटी बात से कैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे टाइम पर जब ये ईश्वरी ज्ञान लिया, और उसमें सबसे पहला लेसन जो आपको यहां भी सुनने को मिला, हम कौन हैं, उसकी एप्लीकेशन, हम सब आत्मा हैं, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, उसको प्रैक्टिकल में लाना। जिसको ज्ञान नहीं है उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखकर उनके साथ व्यवहार करना, वो मिसबिहेव करें कोई बात नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, मुझे तो ज्ञान है ना, तो मैं उसको अप्लाई करूं। शुरू शुरू में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन देखा गया थोड़े ही समय के अंदर सबके साथ बहुत अच्छा तालमेल, जिसको कहो अंडरस्टैंडिंग हो गई। इतने तक हो गया कि अगर हम वहां जहां पर रहते हैं उधर बैठे हैं, सिगरेट पीने वाला कोई सिगरेट नहीं पिएगा, बंद कर देगा, बिना मतलब की बातें कोई नहीं करेगा, व्यर्थ जो बातें हैं। कारण क्या, ज्ञान के बाद समझ में आया, जैसे आज व्यापार के अंदर आपको अपने समय की कितनी वैल्यू रहती है, पैसे की कितनी वैल्यू रहती है, ईश्वरी ज्ञान के बाद समझ में आया कि हमारा तो एक एक सेकंड इतना वैल्यूएबल है, इसको हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते। शब्द हमारे क्या होने चाहिए, सत्युग में देवताएं होंगे, त्रेता में क्षत्रिय होंगे, द्वापर में पुजारी बन जाएंगे, कलयुग में तमो प्रधानता है। जब ये ज्ञान मिलता है तो हम कहते हैं हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, परमात्मा की डायरेक्ट संतान, तो देवताओं से भी ऊंचे हो गए। पर वो प्रैक्टिकल में होना चाहिए, व्यवहार के अंदर होना चाहिए। जब उसको अप्लाई करना शुरू किया, सच्ची बताऊं कि पहले नींद ठीक नहीं आती थी, इतनी छोटी उम्र में भी नहीं, तो बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, पर ये सोचते रहना हमारी क्या कमी है, क्यों हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, गांधी जी की किताब माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, वो सब पढ़े। मेडिटेशन भी करता था मैं, रामतीर्थ और विवेकानंद की किताबें पढ़ करके, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में स्ट्रेस फ्री नहीं थे, प्रोफेशन की स्ट्रेस नहीं थी, उसमें बहुत आराम से चलता था मैं, बल्कि मेरे से जूनियर जो लड़के थे उनको भी आप समान बना दिया था। अब वो नेवी की बातें सुनाऊं तो आपका टाइम उसमें चला जाएगा, वैसे उसमें टेंशन फ्री हो जाएंगे आप। एक्यूरेसी इतनी अच्छी, उस समय का सारी बातें बहुत अच्छी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुख्य बात है जिसके लिए आज आप सबसे मिलना हो रहा है, वो है जो हमारा व्यवहारिक जीवन में शांति रहे, व्यवहारिक जीवन में स्नेह रहे, व्यवहारिक जीवन में आनंद रहे, उसका आधार आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जब तक वो नहीं है तब तक सच्चा प्यार भी नहीं है और सच्ची शांति भी नहीं है। और उसमें भी जब मैं 6 महीने के बाद यहां माउंट आबू में आया था, पिताश्री जी से मिला, मातेश्वरी जी से मिला, और उसके पहले बॉम्बे में इतने जो पुराने भाई बहने ईश्वरी ज्ञान में चलने वाले उनसे मिलते थे, मुझे इतना एक ऐसा अनुभव होता था कि ये लोग इस संसार के हैं या कहीं और ऊपर से हैं। वो आजकल कहते हैं ना, और प्लेनेट से लोग आ रहे हैं, वो तो टेढ़े मेढ़े दिखाते हैं, पता नहीं उनकी शक्ल कैसी है, लेकिन ये तो जैसे चलते फिरते फरिश्ते प्रैक्टिकल देखने में आते थे। उनके मुख से जब बात करते थे तो लगता था ये कहां की भाषा, इतनी प्यार की भाषा। और जब यहां आया मैं, खास बात दिल में लेके आया था कि मुझे जो ये ज्ञान मिला है, जो ये कहते परमात्मा स्वयं आके ज्ञान देता, मुझे वो अनुभव होना चाहिए। पिताश्री जी के साथ पत्र व्यवहार मेरा पहले 6 महीने होता रहा था, वो भी ऐसे लेटर कोई नहीं लिखता है जो उन्होंने मुझे पत्र लिखे थे। और जब बाबा के सामने आप जाएंगे आज, हाँ, इस सेशन के बाद चक्कर लगाने का है, पांडव भवन में जाएंगे, बाबा का कमरा जो है उसी कमरे में मिला था। बाबा गद्दी पर बैठे थे, हम सामने बैठे थे, बिल्कुल साइलेंस में, कोई बातचीत नहीं। और बाबा की तरफ देखते देखते मेरे को उस समय जो अनुभव हुआ, बाबा के मस्तक पे जो आप शिव बाबा का कभी वो पेंटिंग देखते ना लाइट की, वो मस्तक पे देखते, और मैं भी आत्म जो सुन पड़ी हुई थी बातें कि सेल्फ रियलाइजेशन का क्या अनुभव होता है, वो उस समय अनुभव 10-12 मिनट कोई बात नहीं की हमने, लेकिन ऐसा अनुभव जो ईश्वरी जीवन का इतना शक्तिशाली आधार बन गया। उस समय आत्म अनुभूति क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो बातें पड़ी हुई थी, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, वो मैंने अनुभव किया। और मन ही मन में ये तय किया कि जो मुझे अनुभव हो रहा है, ये अनुभव मैं अनेक आत्माओं तक पहुंचाऊं, मेरे जीवन का यही लक्ष्य रहेगा। बाबा से बहुत प्यार से मिले, प्रसाद भी उनसे लिया, और उसके बाद तो फिर ज्ञान की गहराई क्या है वो समझ में आती रही आती रही। पर बाबा ने इस लाइफ को घड़ने के लिए, जैसे मैं यूं कहूंगा कि एकदम रॉ कोई पत्थर मिल जाए और उसको कैसे घड़ते हैं, चीजलिंग करते हैं, सब करते हैं, हर कदम पे उनकी गाइडेंस मिली। जैसे अभी स्नेहल बहन आपको अपना चार्ट लिखने के लिए कह रही थी ना, उस समय बाबा ने ये चार्ट लिखने की बात हमें सिखाई। हर हफ्ते बाबा को चार्ट लिख के भेजते थे, और उसमें बाबा कोई ना कोई बात आगे बढ़ाने के लिए करेक्शन की देते थे। तो एक प्रकार से इस ईश्वरी जीवन के 4 पार्ट मैं मानता हूं, जैसे लौकिक में भी 4 पार्ट हैं, हाँ, बाल युवा आगे चलती हैं बातें, इस जीवन का भी ऐसे ही है। पहला जो पार्ट जिसमें मातेश्वरी जी का, पिताश्री जी का, बड़ी दादियां, जिनको दादियां कहते हैं, बड़ी बहनें, सब ने इतना प्यार की, आध्यात्मिक पालना दी। उसके बाद बाबा ने धीरे धीरे अन्य की सेवा कैसे करनी है वो सिखाई, और फिर इस यज्ञ की कितनी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, उसको हम कैसे उठा सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी। और फिर ऐसा समय आ गया जो प्रैक्टिकल में इस हेडक्वार्टर में आकर के हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लेकिन बाबा के साथ के वो वर्ष 10 थे, पर 10 नहीं मेरे लिए, तो मैं कहूंगा कि एक ऐसा आधार बना वो, क्योंकि एक रोल मॉडल आपके सामने आ जाता है। ब्रह्मा बाबा की मिसाल, बिजनेस में थे तो कैसे थे, फिर आध्यात्मिक जीवन में आए तो कैसे थे, और उनको प्रैक्टिकल मैंने जो देखा, बिजनेसमैन को कोई अच्छी चीज है उसकी वैल्यू बहुत होती है, तो ब्रह्मा बाबा को ईश्वरी ज्ञान की जितनी वैल्यू थी मैंने देखा, इतनी वैल्यू किसी को नहीं। तब बाबा कहते थे बच्चे ये अधिक से अधिक उन आत्माओं तक पहुंचाओ जो जिनको समझ में आए, तो अनेक आत्माओं के कल्याण के निमित्त बन जाए। उसमें भी बिजनेस की बात आ गई, अनेकों का कल्याण हो। क्यों? जब हम मानते हैं कि ज्ञान दाता स्वयं परम पिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी है, तो सारे विश्व की आत्माओं को ये ज्ञान मिलना चाहिए। उसके लिए बाबा हम लोगों को हर समय ऐसी गाइडेंस देते रहते थे। और एक चीज मैं ये इसलिए सुना रहा हूं कि जितनी हम औरों की सेवा में दिन रात अपने आप को समर्पित करते हैं, स्वयं तो टेंशन फ्री होते हैं, अनेकों को टेंशन फ्री बना देते हैं, बल्कि उनको तो उनका भाग्य बनाने का रास्ता भी मिल जाता है। टेंशन्स आती हैं, स्ट्रेस आती है, उसको जब हम इस भाव से ले लेते हैं, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। सृष्टि चक्र को जब अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, ज्ञान के 84 जन्मों का चक्र, तो मानते हैं ये तो कोई नई बात ही नहीं है। और जो स्ट्रेस आती है ये हमको आगे बढ़ाने के लिए आती है, इसलिए घबराने का नहीं होता है। बहुत सारी बातें आई हैं इस यज्ञ के अंदर भी, जब से हमने क्या कहें हैं, होश संभाला है। बचपन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से होश संभाला, माना सेवा के फील्ड में ज्यादा एक्टिव हुए, तो बहुत सारी बातें आती रही हैं। लेकिन नहीं, आपकी शुभ भावना है, कल्याण की भावना है, तो वो सारी बातें, अगर एक व्यक्ति कोई आके विघ्न डालता है तो दूसरा उसको हटाने वाला भी आ जाता है, ऐसा देखा गया है। और बाबा का निश्चय, ब्रह्मा बाबा का और उसके बाद मातेश्वरी जी का, या तो हमारी बड़ी दादी प्रकाशमणि, आप में से कोई मिले भी होंगे उनसे, जानकी दादी हैं, अभी गुलजार दादी हैं, रत्नमणि दादियां और बहने हैं, निश्चय। और बाबा का एक बहुत सुंदर ये वाक्य, निश्चय में विजय है। जितना निश्चय बुद्धि हो के आप कार्य करेंगे, आपकी विजय है ही है, उसमें सवाल ही नहीं है दूसरा। और दूसरा शुभ भावना, अनेकों के लिए शुभ भावना रखना, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। जब आप भावना रखेंगे तो प्रैक्टिकल फील्ड में भी आ जाएगी। और उसमें मैंने देखा है, लौकिक में भी देखते हैं, अलौकिक में भी देखते हैं। जैसे ये हॉस्पिटल वाली बात है, क्योंकि मैं तो, मेरे पास तो कोई पैसा एक भी नहीं था, हॉस्पिटल मुफ्त में तो नहीं बनते हैं, लेकिन हम ईश्वरी सेवा कर रहे हैं, तो हमारे साथ मिलने जुलने वाले कोई बिजनेसमैन, कोई ना कोई। ऐसे ही बॉम्बे में मेरे, क्या कहें, जान पहचान कह लो, मेरे एक बहुत प्यारी आत्मा है, उसने आके कहा कि अगर आपका ऐसा कोई विचार हो तो $2,00,000 मेरे देना चाहता हूं। आज से 16 साल पहले की बात है, उस समय डॉलर का भाव 25 रुपए था। अब मुझे तो पता नहीं था कितने में वो हॉस्पिटल खुलता है, तो हमारे डॉक्टर अशोक मेहता बॉम्बे वाले, उनको ज्यादा जानकारी थी। फर्स्ट फेज खुला, जब उसका एस्टीमेट बनाया डॉक्टर मेहता ने तो 75 लाख का बना, 50 लाख। वो दादा कहे कि मैं तो 50 लाख की बात की है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं दादा, आपने बीज बोया 50 लाख का, बाकी दूसरे भी साथी मिल जाएंगे। फर्स्ट फेज बनी, उसको देख करके दूसरे एक भाई आए, इंग्लैंड से आए थे, सेवा देख करके कि इतनी सेवा हो रही, यहां पर कोई फी नहीं ले रहे हैं, गरीबों को दवाइयां भी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसने कहा सेकंड फेज आपका जो है वो सारा ही मैं बनवा देता हूं, लेकिन इतनी भावना उनकी ऊंची, कहता मेरा नाम किसी को नहीं बताना, बस दूंगा भी सब ऑफिशियल, हाँ, कोई ब्लैक मनी नहीं, कुछ नहीं, पूरा ऑफिशियल दूंगा, लेकिन मेरा नाम किसी को नहीं बताना है। क्यों? बाबा से ऐसी बात सीखी हुई कि दाएं हाथ से अगर आप दान करो तो बाएं को पता ना चले, ऐसी भावना वाले। और मैंने देखा है कि जब आप ऐसे ईश्वरी सेवा में करते हैं तो आगे ही आगे बढ़ते। और एक संकल्प है कि इस विश्व को, सिर्फ भारत को नहीं, भारत विशेष है, इस विश्व को फिर से स्वर्ग बनाना है, सदा स्वस्थ बनाना है। और उसके लिए बाबा का इशारा जो हम बच्चों को है, बच्चे अपने तन मन धन से, शुभ विचारों से, अपने श्रेष्ठ कर्मों से भारत को स्वर्ग बनाना है, विश्व में शांति लानी है। इस तरह की भावना लेके हम लोग चल रहे हैं। अब कोई आपको प्रश्न हो तो पूछो, जो भी किसी को पूछना हो।
बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है और झूठ बोलना बहुत जरूरी है। अभी इधर आने के बाद तो एकदम ये हो गया कि अभी कैसे झूठ बोलूं, तो और भी दुविधा में आ गया, उधर जाके करूं क्या मैं, झूठ बोलूं तो ऐसा लगेगा बाबा देख रहे हैं तू झूठ बोल रहा है।
तो नहीं, अभी बाबा देख रहे हैं इसलिए झूठ नहीं बोलना है, पहले सोचना है आपकी अंतरात्मा क्या कहती है। झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, वो आज के युग की जैसे के क्या कहते रीत रस्म बन गई है, ठीक है, पर अपनी अंतरात्मा क्या कहती है, हाउ फार इज इट राइट। सच्ची दिल पर साहब राजी कहा जाता है, ठीक बात है। अब इस एक ही बात को ले ले हम, कलयुग की देन कहा जाएगा इसको, ठीक है, पर इस कलयुग की देन को चेंज करने के लिए निमित्त कौन बनेगा? महात्मा बुद्ध सब नहीं बनते थे, महावीर सब नहीं बनते हैं, ब्रह्मा बाबा सब नहीं बनते हैं, एक ही बनता है। क्या वो आप एक बन सकते हो? हिम्मत रखो ना, हिम्मत रखो तो बाबा की मदद मिले, इसलिए कोशिश करो, हिम्मत रखो तो चेंज आए, नहीं तो कलयुग का घोर तो कहा ही जाता, और घोर हो जाएगा, फिर आप ही उसमें फंसेंगे, दूसरा कोई नहीं फंसेगा, वही लेने वाले वही फंसाने वाले हैं। मैं सुनता रहता हूं कहानियां, इनकम टैक्स वाले लेते भी हैं, रेट भी डालते हैं आपके ऊपर, फायदा क्या हुआ? उससे तो अच्छा है सच्चाई से करो, कम कमाई कर लो ना, उसमें क्या होने वाला है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को नंबर वन, हाँ वो सारे विश्व का सबसे बड़ा मेरे को ही बनना है। अब आप बताओ नंबर वन नंबर टू बनने वालों का हाल क्या है इस समय, आपस में दोनों भाई लड़ रहे हैं। न शांति न आनंद न सुख, क्या फायदा होगा।
हाँ बहन जी।
ओम शांति। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने 25 साल की एज में अपना करियर छोड़ दिया,
हाँ जी,
तो कोई भी और लड़का प्रॉब्लम जो आपने बताई वो वाकई में नेवी में है, आई नो, तो उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए कोई लड़का छोड़ना चाहे भी तो और कुछ उसके लिए करियर में क्या है, वो क्या करे।
मैंने प्रॉब्लम के कारण नहीं छोड़ा है।
हाँ जी।
ना प्रॉब्लम कोई नहीं थी, आई एम सॉरी, मुझे सारी दुनिया को संदेश देने का संकल्प था।
अच्छा।
और वहां मेरा टाइम इतना जाता था, प्राइम टाइम सारा उसमें चला जाता था।
अच्छा, आपको ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने आपको इस तरह से, मतलब
मेरे को उसके लिए आई हैड टू फाइट फॉर इट, ऐसे ही नहीं मिलता है।
अच्छा, नहीं मतलब वैसे अगर
मैंने अप्लाई किया उसके लिए काफी जद्दोजहद चली, उसके बाद लास्ट में जाकर के उन्होंने कहा भाई ये इनको अपनी रुचि उधर है, ऐसा व्यक्ति कहीं वो रह जाएगा शिप पर तो कहीं शिप ही ना साथ डूब जाए।
नहीं वैसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि एकदम से छलांग मार दे तो फिर।
छलांग तो सहज नहीं है मारनी। देखो मैं आपको बताऊं कि जब तक अपने मन में इतनी दृढ़ता ना हो, और दूसरा आपके लौकिक में जो हिसाब किताब है वो आपके क्लियर नहीं है जब तक, तब तक आप ऐसा हिम्मत रख ही नहीं सकते
जी। क्योंकि
जी
माता पिता की और घर वालों की तरफ से क्या इसमें प्रेरणा।
उनसे उनका जो हिसाब किताब था मैंने कहा ना, उनका हिसाब किताब पूरा कर दिया और उसके बाद मैंने अप्लाई किया, उसके पहले नहीं। ये नहीं कि उनको बीच मंझदार छोड़ देता।
उनकी सहमति थी।
उनकी सहमति बाकायदा। उनकी सहमति का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, सुनाऊं? बड़ा इंटरेस्टिंग है।
जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे।
जब मैंने उनकी सहमति मांगी, मेरे से बड़े भाई 10 साल बड़े हैं प्रोफेसर, उनसे मैंने कहा कि मुझे पूरा ही इस सेवा में लगना है और पूरी अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल बनाना है। उन्होंने कहा यह बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये बताओ कि सबसे अच्छी लाइफ क्या है, और मैंने खुद ही लिखा फिर वर्ल्डली लाइफ, वर्ल्डली कम स्पिरिचुअल लाइफ, ओनली स्पिरिचुअल लाइफ। उन्होंने टिक मार्क लगा दिया ओनली स्पिरिचुअल लाइफ पे। तो मैंने कहा अब कितना भी मुझे कठिनाई हो, मुझे ओनली स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी है। अगर मैं नहीं चल सका तो आपके पास आ जाऊंगा, फिर स्पिरिचुअल कम वर्ल्डली में पड़ जाऊंगा बस। और मुझे वो याद दिलाते रहे बीच बीच में, चिट्ठी लिख करके पूछते रहे, कहते रहे अच्छा अभी बहुत आध्यात्मिक हो सेवा हो गई, अब आ जाओ वापस, हाँ ब्याह शादी कर दें आपकी। तो उनको मैंने कहा मेरी ब्याह शादी ईश्वरी सेवा के साथ हो चुकी है, अभी और शादियां नहीं करनी।
हाँ भाई सर।
ओम शांति।
हाँ जी।
एक जनरल क्वेश्चन है, बिजनेस मैन हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, ट्रेडिंग हो,
हाँ जी,
मगर जो भारत की बात यहां ही आके सुनी है कि एक अध्यात्म के अंदर भारत के लिए, कल भी दादी जी ने गांधी जी के बारे में, हमारा तो 47 का जन्म है हमें तो कुछ पता नहीं, तो वो जब राष्ट्र को देखें, ये सब बहन भाइयों की प्रॉब्लम है। विश्व आज भारत के अंदर जितने भी बिजनेसमैन है, चाहे कोई बहुत बड़ा है चाहे कोई बेचारा छोटा सा दुकानदार, हम उसको छोटा नहीं गिनते, उसका रोल है वो भी निभा रहा है जो हम सीखे अभी 2-3 महीनों में। तो गवर्नमेंटें जो भी हैं, आज एक नहीं होती हैं, 3 गवर्नमेंटें हैं, एक हमारे ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सिटी के अंदर एक कारपोरेशन है, ऑक्ट्राई लगाती है या और तरह के, जैसे आपने इनकम टैक्स की एक उदाहरण दे दी है,
चौथी भी है
वो तो नहीं पता,
होम गवर्नमेंट भी रहती है
नहीं सर जी,
घर की सरकार भी तो रहती है, नहीं सुनाइए आप चलते रहिए,
नहीं मैं उस तरफ नहीं जा रहा
जी,
मैं स्टेट फॉरवर्ड ही जा रहा हूं
जी।
जब मैं कुछ ही दिनों से अध्यात्म के ऊपर जुड़ा हूं, मेरे अंदर जब से तीन दिनों से एक बार बार यही प्रश्न आता है, सब कुछ सीखा भारत के ऊपर सबसे बड़ी 47 की आजादी के बाद नए नए जोश थे, नए नए बच्चे थे, आजादी की समझ आई, वही गाने सुने के आजादी कैसे मिली, प्रश्न बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी है और उसके आगे नहीं निकलूंगा, तो मुश्किल सबको कहां आ रही है, क्या भारत एक बना, आज 30 स्टेटें इसको मतलब यूनियन टेरिटरी डाल के डाल लो, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब माल जाता है वो स्टेट कहते हैं, वहां एक वर्ड लिखा जाता है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, नॉट फ्रॉम द कंट्री से बाहर जाए तो एक वर्ड है इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, बिजनेस की बात है, मान लो ये राजस्थान से माल बाजू की स्टेट गुजरात,
प्रश्न तुरंत पूछ लीजिए,
अच्छा मतलब बात है कि गवर्नमेंटों के ऊपर आप कैसे हम कंट्रोल करें, उनकी इजाजत आती हैं, आपने समझ भी गए हैं, जाजतियां कुछ ज्यादा हो जाती हैं, ये नहीं अध्यात्म के साथ जुड़ के डिसऑनेस्टी हो नहीं सकेगी, या अध्यात्म चलेगा तो या फिर उसमें इम्प्योरिटी हो जाएगी, जो हम प्योर पवित्रता हमें बना रहे हैं ना और हम बन रहे हैं ना, उसी के अंदर से एक प्रश्न है, धन्यवाद आप उत्तर दे दीजिए।
ऐसा है, ये बात मैं समझ सकता हूं जो आप कह रहे हैं, बात तो यहां आती है कि आखिर क्या हम इसी के साथ जीना चाहते हैं, ऐसे ही जीना चाहते हैं या कुछ चेंज भी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जब आजादी लेनी थी उस समय बड़े बड़े बिजनेसमैन गांधी जी के साथ चले, ऐसा नहीं कि नहीं चले, अगर बाद में भी साथ ठीक से वो उन्हीं मूल्यों को लेके चलते तो आज ये हालत ना होती, कंपटीशन के कारण, स्वार्थ के कारण ये माहौल बन गया है, उसको कोई कट थ्रोट पॉलिसी कह देता, को कुछ कह देता, को कुछ कह देता, लेकिन बीज क्या है, स्वार्थ, पहले वो बीज नहीं था स्वार्थ का, वो देश के लिए था सारा, तो फिर से वो भावनाओं के परिवर्तन की जरूरत है, फिर से भारत के प्रति वो भावना आनी चाहिए, समाज के प्रति वो भावना आनी चाहिए, तो वो चेंज हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता, और उसका आधार आध्यात्मिकता ही होगा। गांधी जी ने भी अगर चेंज लाई, वो कहां से शक्ति मिली उनको, जब कभी कोई बात आई गीता खोलते थे और उसमें से उनको प्रेरणा मिलती थी, और उसके साथ में हालांकि पहले ऑपरेशन तो पहले भी था, कितने वर्षों से चल रहा था, कितने सौ साल से, लेकिन गांधी जी को एक चिंगारी जिसको कहा जाए, और उसके लिए उन्होंने वो रास्ता ढूंढा, अपना त्याग करना पड़ा, परिवार का त्याग करना पड़ा, प्रोफेशन का त्याग करना पड़ा, बिना त्याग के कुछ नहीं होता है। तो आज अगर हमें फिर से वो भावना दिल में जागृत हो जाए कि हम अपने भारतवासियों को फिर से सुखी बनाएं, भारतवासियों को ये जो खींचातान चल रही है, प्रैक्टिकल देख लीजिए आप, कहने में आता है भाई बहुत आगे बढ़ गए हम, करोड़ों अरबों खरबों कितना वो धन हो गया है, बजट देखो तो कितना हो गया, लेकिन आज इंसान की लाइफ क्या हो गई, कितनी है शांति आज, पैसे वालों को कितनी है, गरीबों को कितनी है, मुझे बताइए आप, सुखी तो नहीं हुए सभी। एक होती है व्यक्तिगत अपने परिवारों की आपस में, वो अशांति की बात छोड़ो, लेकिन नेशनल लेवल से ही आप देखो क्या हाल हो रहा है, और नेशनल थिंकिंग को चेंज करने के लिए उसमें आपका पार्ट बहुत बड़ा है, पर वो पहले आप क्लियर होने चाहिए आपकी थिंकिंग में, आपके अंदर वो फिर से चिंगारी आनी चाहिए जो गांधी जी वाली थी, सत्य अहिंसा, ये दोनों बातें आनी चाहिए। तो सत्यता की बात पर जब तक नहीं आएंगे कैसे गाड़ी चलेगी? सारी बात झूठ के साथ जोड़ करके नहीं चल सकती है, सारी बात करप्ट मेथड से नहीं चल सकेगी। वो खोखलापन आ गया सारे अपनी नेशनल क्या कहें स्टैचर के अंदर, उसको मजबूती लानी जरूरी है, और उसके लिए बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे, लेकिन उसमें सबसे बेसिक परिवर्तन है सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तभी हो सकेगा।
हाँ भाई साहब।
ओम शांति।
हाँ जी,
अभी लास्ट तीन दिन से सुन रहा है, जो ज्ञान मिला है एक्चुअली जीवन के हेडक्वार्टर में आप पहुंचे हैं ये तो पक्का मालूम पड़ा है, बट यहां से जाएंगे, सुना था कि ऐसे ज्ञान लेने के लिए जन्मों जन्म भी कम पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। अब यहां के मिला है, मगर यहां जाने के बाद बहुत सारे लोग उकसाएंगे बदलाव देख के, तो उनको कैसा फेस किया जाए या उनको कैसा ट्रीटमेंट किया जाए?
उसका सिंपल सा तरीका है, मैं तो आपको बहुत सहज बात बताऊंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा। चाहे आप यहां हैं, चाहे आप लौकिक घर में हैं, चाहे कहीं बिजनेस के कारण और कहीं जाते हैं, आपकी शरीर की जरूरियात के लिए क्या करते हैं आप? सुबह उठ के स्नान करते हैं और कुछ खाते भी हैं, ठीक है? उसके बिना तो गाड़ी नहीं चलती है ना। ऐसे ही सुबह उठ के थोड़ा टाइम मेडिटेशन करना, साइलेंस, सोल कॉन्शियस होके परमात्मा के साथ मन लगाना, ताकि आत्मा शक्तिशाली बने, उसका पास्ट का हिसाब चुकतू हो, आगे के लिए वो ताकत भरे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और उसके साथ साथ बुद्धि को भोजन चाहिए ईश्वरी ज्ञान का, उसका प्रबंध, जहां से आप अभी आए हैं ना, हर एक के कनेक्शन में सेंटर है कोई ना कोई, वो प्रबंध कर लीजिए। आजकल तो इतने अच्छी तरीके हैं, कहीं पर भी आप हो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है, ज्ञान का आपको डोज वहां पर मिल जाएगा, बुद्धि का भोजन वहां मिल जाएगा, जहां पर भी जाएंगे। एक घंटा अपने लिए जरूर देना, ये शुभ भावना है, कोई को बंधन में बांधने की इस भावना नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे और बातें जरूरी हैं रोज के लिए, ये ज्ञान भी रोज चाहिए। सप्ताह में एक दिन से नहीं गाड़ी चलती है, कोई कह भी देंगे आपको हल्का करने के लिए, लेकिन बिजनेसमैन मींस जो प्रॉफिट का सोचे, आपका बेनिफिट किस में है? 24 घंटे जो हैं उसमें से 8 घंटे आप आराम करो, 8 घंटे अच्छी तरह से जाके बिजनेस का कारोबार 10 घंटे करो, बाकी 6 घंटे में से एक घंटा अपने लिए जरूर दो। बस इतनी छोटी सी बात करनी पड़ेगी आपको, आधा घंटा साइलेंस में बैठो, आधा घंटा ज्ञान का थोड़ा अध्ययन करो, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चेंज क्या आती है। आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा, दूसरे कहेंगे आपको क्या मिल गया है। आपकी मुस्कान कभी गुम नहीं हो सकेगी, कितने भी आपके सामने डिफिकल्टीज आ जाएं, कितनी भी बातें आ जाएं, कई सारी बातें आती हैं आएंगी, दिन ब दिन ज्यादा होने वाली हैं, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम समय है, लेकिन आप उन सब के सबका सामना कर सको और खुशी खुशी अपना आगे बढ़ते चलो, उसका ये एक छोटा सा नुस्खा है। कई लोग कहेंगे भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर दुख भोगने पड़ेंगे। फायदे की बात सोचिए ना, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हर एक के घर में कुछ ना कुछ कोई मंदिर बना लेता है, कोई कुछ मेडिटेशन का कर लेता है। यहां तो सिखाया क्या जाता है, नेचुरल योग करो, आप उठ करके बैठ जाओ, चलते फिरते योग कर लो, दौड़ लगाते योग कर लो, आपको सैर करनी है, कुछ भी करना है, क्योंकि बुद्धि का काम है। और बातें व्यर्थ सोचने की बजाय मन को परमात्मा के साथ लगाओ। गाड़ी चलाते हुए आप योग लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा पिता का वैसे हुक्म है, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। क्यों? निरंतर अगर परमात्मा के साथ मन लगेगा तो आपकी बुद्धि का जो निर्णय शक्ति है वो नंबर वन रहेगी, कभी गलती नहीं होगी, और सदा ही आगे बढ़ेंगे, उन्नति को पाएंगे, परिवार भी सुखी रहेगा, समाज भी सुखी रहेगा, व्यवहार भी सुखी रहेगा, ऐसी जीवन बनती।
ये प्रश्न आखिरी रहेगा और संक्षिप्त में करें,
ठीक है? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारा दिन बैठ जाऊंगा, लेकिन आपका आज थोड़ा चक्कर लगाने का दिन है,
ओम शांति
बाबू देखने का। हाँ जी,
आरपी मल्होत्रा फ्रॉम चंडीगढ़। मेरा प्रश्न ये है कि आपने टोटल स्पिरिचुअलिटी को ऊंचा बताया है। अगर मेरा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये, अगर सभी लोग यही सोचेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? क्या कर्मयोगी रहते हुए स्पिरिचुअल होना बेस्ट रास्ता नहीं है?
नहीं, नहीं, आप
यहीं खड़े रहिए
एक मिनट। कर्मयोगी ही बनना है वास्तव में। तो कर्मयोगी का अर्थ क्या है? कर्म के साथ योग नहीं चाहिए, कर्म करते हुए योग चाहिए, कर्म करते हुए योग चाहिए, क्योंकि आप योग युक्त रहेंगे तो आपका कर्म श्रेष्ठ बनेगा, रॉन्ग कर्म नहीं करेंगे, उसके लिए ताकत आएगी अंदर से, इसलिए कर्म योगी ही बनना है। ठीक है,
धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति।
ठीक है, एक भाई आ रहे हैं, जो भी है पूछ ले, जल्दी जल्दी, वट एवर। बस
ओम शांति
के दो मिनट साइलेंस करके पूरा करेंगे।
क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन योर एम्प्लॉई या समवन चीट्स यू?
थैंक हिम। If he cheats you, you thank him, okay, so that your debts are gone.
No, he... Okay, you forgive him, that's the answer. You forgive him, but he still cheats you and makes you into bigger trouble.
Then you know the ways.
Because this world... Because
you have to use the right method. You have to complain against him.
Yeah, that's what I did, but still.
No, there is nothing still.
Okay, then
you
no.
Have to,
no, it's,
you
no,
have
no,
to,
what my thing is...
You have to act.
Act accordingly.
Oh.
Okay.
In the right way.
I know, that's right, because...
If you are cheated once, you can accept it. But if you think that you are going to be cheated again and again, better to complain against it. But you are going to be cheated more, because these days the people to whom you complain,
because it's a practical
they
thing.
Also cheat you.
Yeah.
This is the problem. Okay. So you have to find ways how not to be cheated.
Okay. Mera sawal nahi hai koi bhi.
Ji.
Wo kaisa insaan ki jo औरों की खातिर जिया करे, वो ही है इंसान की जो सब लोगों का भला करे।
शिव बाबा की राहों से संसार को स्वर्ग बनाना है, इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है, इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है। खुद जियो सबको जीने दो, औरों को अपनाना है, इसी मंत्र से विश्व शांति का घर घर दीप जलाना है।
धन्यवाद।
ओम शांति। आपने बोला है कल जो खत्म होने वाला है, टीवी में आजकल प्रसारण आ रहा है कि 2012 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, ये कब तक, क्या सच्चाई है इसमें?
नहीं तो वो जब हम सुनते हैं ना कि 2012 तक एग्जैक्ट है उसकी डेट दी हुई 21 दिसंबर 2012, भाई उसके बाद कैलेंडर नहीं है, वो लिखने वालों का कैलेंडर नहीं है, लेकिन जो हमें जानी जाननहार जिसको कहा जाए ना, परम पिता परमात्मा, उन्होंने जो ईश्वरी ज्ञान दिया है उसके अनुसार तीन बातें इटर्नल हैं, इटर्नल समझते हैं, शाश्वत हैं, आत्मा शाश्वत है, परम पिता परमात्मा शाश्वत है, और ये सृष्टि ड्रामा जो है वो भी अनादि और अविनाशी है, इसलिए ये आगे भी चलना है, परिवर्तन होना जरूर है, जो अभी कलयुग है उसको परिवर्तन होके सत्युग में आना है, तो शुभ भावना रखो कि हम भी गोल्डन एज बन जाएं और गोल्डन एज शुरू हो जाए।
थैंक यू सर।
और गोल्डन एज में श्री कृष्ण का विशेष पार्ट रहेगा, जो बचपन में श्री कृष्ण है और बाद में स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनते हैं, तो श्री कृष्ण किस बात के लिए मशहूर है? मुरली के लिए, तो आप मुरली सुनेंगे अभी। 3 मिनट साइलेंस, मुरली भी सुनो और साइलेंस भी करो। ओम शांति। अब जब मेडिटेशन करें ना तो थोड़ा मुस्कुरा के करना, हाँ, लाइट होके एकदम खुशी में, सब अपनी जो बातें हैं शिव बाबा को दे दो।